السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سیمپلنگ کچھ سمجھ آئی؟ ہم نے سیمپلنگ کے ریفرنس میں کچھ بنیادی باتیں لاسٹ لیکچر میں سیکھ لی تھیں، اور جو آخری بات چل رہی تھی سیمپلنگ کے ریفرنس میں، دیٹ واز ریگارڈنگ ٹو ڈفرینٹ اپروچز وچ آر یوزڈ فار سیمپلنگ. نمبر ون which we have already discussed is judgmental sampling. اور آج جو بات اب ہم نے شروع کرنی ہے وہ statistical sampling سے متعلق ہے. Judgmental sampling میں ہم نے discuss کیا تھا کہ auditor اپنی sixth sense کو use کر رہا ہے، اپنے previous experience کو use کر رہا ہے، وہ mathematics اور statistics میں زیادہ involved نہیں ہو رہا، وہ ججمنٹل ہو رہا ہے سیمپل سائز کو ڈیٹرمن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. وی ڈسکسڈ فیو ایڈوانٹیجز اینڈ فیو ڈس ایڈوانٹیجز فار دیٹ ججمنٹل سیمپلنگ. اب ہم بات کریں گے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی. اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ سینسیبل ہے، سائنٹیفک بھی ہے، میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس بیسڈ بھی ہے، اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. ریزلٹس ٹھیک دیتی ہے لیکن یہاں پر پروفیشنسی ریکوائرڈ ہے اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے ریفرنس میں، کیلکولیشنز وغیرہ کرنی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ موسٹ آف دا آڈٹ فرمز جو اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ میں جانا چاہتی ہیں وہ پہلے سے ہی کمپلیکس پلان بنا لیتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سیمپلنگ کرنی ہے، آڈٹ سیمپلنگ کس طرح ہم نے کرنی ہے، اس بارے میں وہ پہلے سے ہی پلان بنا لیتی ہیں. اب ان پلانس کی ڈفرینٹ شکلیں ہو سکتی ہیں، دیٹ یو کین فائنڈ ان ٹرمز آف چارٹس، in terms of graphs, in terms of computer methods, کوئی بھی وہاں پر شکل موجود ہو سکتی ہے، ٹیبلز وغیرہ ہو سکتی ہیں. اب چونکہ ایک مرتبہ ایکسپرٹس نے ان کو ڈیزائن کر دیا، اب وہ جو آڈٹ اسٹاف وہاں پہ موجود ہے جس نے آڈٹ کرنا ہے، اس آڈٹ اسٹاف نے سمپلی ان کو یوز کرنا ہے. ان کو یوز کرنے کے لیے ان کو اتنا زیادہ میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل نالج ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا وہ ایزیلی آپریٹ کر لیتے ہیں ان کو، اور ان چارٹس یا ٹیبلز یا گرافز کو یوز کرتے ہوئے اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ تیار ہو جاتی ہیں. اب یہ جو اسٹیٹسٹیکل سیمپل ہم نے حاصل کر لیا یا بنا لیا، اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جس طرح ہم نے ججمنٹل سیمپل کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے. سو جناب، پہلے ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کے. پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ از سائنٹیفک. یس، اٹ از سائنٹیفک. اب سائنٹیفک ہونے کی جو بات ہے وہ بہرحال ڈینائی تو نہیں کی جا سکتی کہ جی سائنٹیفک ہونا ایک اچھی بات ہے. آپ جب سائنٹیفک ہو جاتے ہیں تو لاجیکل بھی ہو جاتے ہیں، سینسیبل بھی ہو جاتے ہیں، پریسائز ہو جاتے ہیں. آپ ادھر کی ادھر کی نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ سائنٹیفک ہو کر فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ اپروچ از سائنٹیفک. نیکسٹ کمز، اٹ از ڈیفینسیبل، جسٹیفائیبل. ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی کیوں یہ سیمپل سائز بنایا گیا پاپولیشن کے اس پرٹیکولر ایریا کو، ہم کیوں آڈٹ پروسیجر کے ذریعے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیوں ایگزامن کر رہے ہیں اسپیسیفک کلاس آف ٹرانزیکشن کو، کیوں اس اسپیسیفک اکاؤنٹ بیلنس کے اوپر ہم پروسیجر اپلائی کر رہے ہیں. ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈیفینسیبل. نیکسٹ، اٹ پرووائڈس precise mathematical statements about probabilities of being correct. Correct hone ki probabilities maujood hain statistical sampling. Mathematical calculations based. Next comes, it is efficient. Yani ke, hum bohut zyada sample size nahi le rahe hote phir ab. Efficient hai. To the point hai. Resultant hai. Hame result mil jata hai. Ye sample size jo hota hai, sahi maano mein representative hota hai. Lehaza, hame theek results bhi de deta hai. Next is ke, it tends to cause uniform standards among different audit firms. Ab judgmental to, har auditor, usme alag-alag judgmental hoga na, us judgmental sampling mein. Different firms ka alag, uske baare mein sample size hoga. Jabke, yahan par different firms uniform ho sakti hain, kyunki scientific hai. Kyunki ek formula based hai. Ek chart based hai. Ab ek chart develop hua hua hai, wo chart jo hai, that is applied by every audit firm. Ab usi ke upar base karke wo sample size determine kar lete hain. Next is ke it can be used by lower grade staff, jo ke judgmental nahi ho sakta. Lower grade staff, pehle zikr kiya, ke chunke pehle complex plan ban chuka hua hai, ek complete plan ban chuka hua hai, aapne ek table develop kar liya hua hai, graphs develop kar liye hue hain, usko koi bhi use kar sakta hai. Computer ka thoda sa knowledge rakhne wala bhi us audit staff ka member us method ko use kar sakta hai sampling ke liye, jabke lower grade staff jo juniors hote hain audit team mein wo judgmental nahi ho sakte. Kyunki judgmental hona, usko kisi cheez ko judge karna, wo to expertise involved honi chahiye na uske andar. Phir experience based hota hai, exposure hona chahiye uska, tab jaake wo judge kar sakta hai kisi bare mein. Ab yahan par wo judge to nahi kar sakta, lekin us table ko use kar sakta hai, jis table par base karke wo audit sample size determine kar lega. Ye to the ji iske advantages, jisme ki humne dekha ki ye approach scientific hai, justify kiya ja sakta hai. Aur sabse badi baat ye hai ki lower grade ka jo audit team member hai wo bhi isko use kar sakta hai. Ab baharhal tasveer ka dusra rukh bhi to dekhna hota hai. Kuch disadvantages hai isi statistical sampling approach ke. Like it is not fully understood. Zaruri nahi ki har audit team ka jo member hai wo un complex plans ko samajh sake aur phir unko correctly apply kar sake, use kar sake. Aur jab un audit plans jo banaye gaye sampling ke liye, unko agar wo audit team member correctly use nahi kar pa raha, to uska incorrect usage jo hai galat sample size determine karwa dega, jiski wajah se wo representative nahi hoga aur jo conclusion draw hoga wo galat hoga. Lehaza ye ek disadvantage ho sakta hai. Next ye ke bahut sa faltu time jo hai mathematics se mutalliq formula ke sath khelne mein guzar jata hai. Practical auditing kam hoti hai. Disadvantage to hai, baharhal scientific hai to uske wo scientific calculations ki taraf bhi to hame jana hota hai na. Lehaza ye ek disadvantage ke taur par liya jata hai ki auditing ka kaam kam ho raha hai aur ye hum sampling ki calculations jo hain wo zyada kar rahe hain. Phir mazid ye ke it is inflexible, a flex nahi hai. Ab judgmental mein to hum flex ho gaye na, जब जजमेंटल सैंपलिंग हो रही होती है तो वहां पर ऑडिटर अपनी सेंसेस के मुताबिक किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, किसी को ड्रॉप कर लेता है सैंपलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो फॉर्मूला ने कह दिया वो ही आपको मानना पड़ेगा, लिहाजा इट इज इनफ्लेक्सिबल। लेकिन जी ये आपके स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से मुताल्लिक कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। हमने जजमेंटल और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग देख ली। बहरहाल ज्यादातर नॉर्मल ऑडिट फर्म्स में जो बड़े साइज की ऑडिट फर्म्स नहीं है वहां पर जजमेंटल सैंपलिंग हो रही है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, टेबल बेस्ड सैंपलिंग भी चलती हैं लेकिन ज्यादातर जजमेंटल सैंपलिंग चल रही होती है। हमें एक बात ये अच्छी तरह से अब समझ आ गई कि सैंपलिंग की जाती है रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करने के लिए, यानी कि वो एश्योरेंस जो है उसका रीजनेबल होना इस बात की दलील है कि सैंपल बेस्ड है, अदरवाइज तो वो सर्टेनिटी का लेवल होता ना। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट सैंपल। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑडिट सैंपल में मौजूद होना जरूरी है। हम जिसके बारे में कह रहे हैं कि ऑडिट सैंपल है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंदर क्या खसूसियात मौजूद होना चाहिए? सबसे पहले रैंडम होना चाहिए। अब व्हेन वी टॉक अबाउट रैंडम सैंपल, अब रैंडम के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि रैंडमली कहीं से भी उठा लिया हमने और वो एक जनाब सैंपल साइज बन गया। नहीं, ये बल्कि एक साइंटिफिक टर्म के तौर पर हम इसको लेंगे कि रैंडम सैंपल मींस के पॉपुलेशन में मौजूद सैंपलिंग यूनिट्स जितने भी हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर सैंपलिंग यूनिट के लिए ऑडिट सैंपल के तौर पर सिलेक्ट होने की। इसको रैंडम कहते हैं कि जितना भी पॉपुलेशन में सैंपलिंग यूनिट मौजूद है उनमें से कोई भी ऑडिट सैंपल का हिस्सा बन सकता है। दिस इज नोन एज रैंडम। नेक्स्ट टर्म्स, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब यह नहीं कि हमने जो हाई फिगर्स ही ले लिए हैं लोअर लेवल पे जो फिगर्स हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया, लोअर ही ले लिए हैं हायर लेवल पे बिल्कुल छोड़ दिया। मींस जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से हम जो सैंपल साइज उठाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, हायर लेवल पर भी और लोअर लेवल पर भी वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इस तरह से हम सैंपल साइज उठाएंगे। नेक्स्ट कम्स, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ये ऑडिटर के लेवल पे बात है कि ऑडिटर को प्रोटेक्ट कर रहा हो, यानी कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं जहां पर के ऑडिटर को पूछा जा सकता है कि भाई आपने कैसे ये ओपिनियन दे दिया, ये तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, तो वो जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनको कवर करता हो तो वो प्रोटेक्टिव होगा ऑडिटर के लिए। ये उसके करेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद होना चाहिए सैंपल साइज के अंदर। नेक्स्ट, कि वो अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए, यानी कि क्लाइंट को ना पता हो कि कौन सा सैंपलिंग यूनिट जो है वो सिलेक्ट हो सकता है ऑडिट सैंपल के तौर पर। अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर क्लाइंट को पता चल जाए कि जी फुलाना अकाउंट बैलेंस चेक हो सकता है तो वहां पर तो वो मामला दुरुस्त कर देगा, बाकी के गड़बड़ हो जाएंगे। क्लाइंट को मालूम हो जाए कि इन्होंने तो ईयर एंड पर ही जाकर सैंपल साइज डिटरमिन करना है, आखिरी महीने में से सैंपल बनाना है या दरमियान के महीने में से सैंपल बनाना है, तो वहां पर वो ज्यादा मोहतात किस्म की अकाउंटिंग कर रहा होगा। लिहाजा वो सैंपल साइज या वो ऑडिट सैंपल that should be unpredictable. अच्छा जी, अब next ये इनकी characteristics हमने देख ली. अब next एक और बात की तरफ हम जा रहे हैं कि sample selection methods क्या होने चाहिए. अब ये हम different methods यहां पर देखेंगे जो कि sample audit sample को बनाने के लिए एक auditor अपनाता है. यहां पर different methods को बताने से पहले एक बात जहन में रख लीजिए आप कि ऑडिटर ने सैंपल साइज पर बेस करके कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है. उस ऑडिट सैंपल पर बेस करके कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है. लिहाजा जहां कहीं ऑडिटर यह देख रहा होगा कि अभी तक मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा तो एक्सटेंट ऑफ सैंपल बढ़ा देगा. जहां पर वो समझेगा कि हाई रिस्क है एक्सटेंट बढ़ जाएगा. अंटिल अनलेस कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर ले और रीजनेबल एश्योरेंस पर पहुंच जाए तब जाकर वो कहेगा कि ओके जी ये मेरा सैंपल साइज ठीक है. वो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी वो भी फिर उसके अंदर पूरी होती होंगी. यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होगा. जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसका मतलब है कि जी रिस्क एलिमेंट मौजूद है. लिहाजा अब जिस स्टेज में हम एंटर हो रहे हैं वो है कि सैंपल सिलेक्शन के मेथड्स क्या होंगे. अब व्हेन वी टॉक अबाउट सैंपल सिलेक्शन मेथड तो वो जो डिफरेंट अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं दो जजमेंटल और स्टैटिस्टिकल तो कुछ मेथड्स जो है जजमेंटल से मुतल्लक होंगे और कुछ जो होंगे स्टैटिस्टिकल से मुतल्लक होंगे. ये वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि ऑडिटर अप्लाई करता है सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए ऑडिट सैंपल बनाने के लिए. अब लाइक उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैपहैजर्ड सैंपलिंग मेथड को. अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हम हैपहैजर्ड हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर जजमेंटल हैं. हम स्टैटिस्टिकल बेस्ड अप्रोच के इस वक्त मुताबिक सैंपलिंग नहीं करने जा रहे. अब हम देखते हैं कि कोई अनयूजुअल काम हो रहा है, कोई अनयूजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, कोई अनयूजुअल किस्म का अकाउंट बैलेंस है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. हैपहैजर्ड है. कोशिश ये करनी है कि यहां पर बायसनेस ना हो, बायस फ्री हो. आपने जब सैंपल बनाना है तो आपकी बायसनेस वहां पर मौजूद ना हो. किसी चीज को सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करने के लिए आप बायस ना हो रहे हो. तो पहला मेथड जी हैपहैजर्ड, उसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जजमेंट मौजूद होगी. जजमेंट पे बेस कर रहा होगा. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यहां पर नहीं हो रही. नेक्स्ट कम सिंपल रैंडम. अब ये रैंडम टेबल के जरिए से हम बनाते हैं. ये अब स्टैटिस्टिकल अप्रोच के एक मेथड है कि एक रैंडम टेबल या एक कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया जिसमें कि आपने नंबर्स असाइन कर दिए उस सैंपलिंग यूनिट्स को और वहां से अब तमाम सैंपलिंग यूनिट के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस सैंपल साइज में, उस ऑडिट सैंपल में सिलेक्ट होने की. तो ये रैंडम मेथड जो है ये एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होगी, सिंपल रैंडम मेथड. नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटिफाइड मेथड ऑफ सैंपलिंग. अब स्ट्रेटा क्या होता है? स्ट्रेटा कहते हैं लेयर को. आपने उस पॉपुलेशन को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया. अब इट डिपेंड्स ना कि वो पॉपुलेशन ऐसी है कि वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो सकती हो. जबरदस्ती तो आप नहीं उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर सकते. फॉर एग्जांपल हम बात जब कर रहे हैं डेटर्स की तो डेटर्स में कुछ ओवरसीज डेटर्स हैं, कुछ आपके लोकल डेटर्स हैं. तो स्ट्रेटा बन गया कि हम ओवरसीज डेटर्स को अलग एक पॉपुलेशन करार दे देंगे, है तो ओवरऑल टोटल एक ही ना, लेकिन हमने स्ट्रेटा बना दिया अलग से, एक लेयर बना दी, ये जी ओवरसीज डेटर्स हैं और ये जनाब लोकल डोमेस्टिक डेटर्स हैं। अब उनमें से उस स्ट्रेटा में से हम अलग अलग सैंपल डिटरमिन करेंगे। हो सकता है कोई एक स्ट्रेटा ऐसा हो जिसको कि 100% ही आपने वेरीफाई करना हो और दूसरे स्ट्रेटा में से आपने कोई सैंपल साइज डिटरमिन करना हो। लिहाजा एक स्ट्रेटिफाइड मेथड भी आपको मिलता है सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए। नेक्स्ट कम्स क्लस्टर सैंपलिंग। अब ये क्लस्टर सैंपलिंग कब यूजफुल है? ये मेथड उस वक्त यूजफुल है जब हमने डाटा मेंटेन किया हुआ है डिफरेंट क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में। अब लाइक वेजेस, लेबर वेजेस, नॉर्मली वीकली वो लेबर वेजेस होती हैं, हम पूरे वीक की वेजेस को इकट्ठा फिर रिकॉर्ड करते हैं। इनवॉइसेस, एक बैच टोटल बना लिया जाता है मंथ्स का, कि एक मंथ के बैच टोटल को फिर हम पोस्ट करते हैं इकट्ठा। अब ये ग्रुप बन गया। अब यहां पर उन क्लस्टर्स को हम सैंपल के तौर पर फिर पिक करेंगे। अब ये फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते। बहरहाल एक मेथड है जो के पास ऑडिटर्स अपनाते भी हैं, लेकिन ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, इसलिए फिर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके अंदर। क्लस्टर सैंपलिंग हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं रैंडम सिस्टमैटिक। अब ये रैंडम सिस्टमैटिक जो मेथड है, ये वो नहीं है जो कि पहले एक रैंडम सैंपलिंग का हमने पढ़ा था, वो तो एक साइंटिफिक मेथड था। ये भी कुछ हद तक साइंटिफिक है, लेकिन बहरहाल इसका स्टार्ट साइंटिफिक नहीं है। इसका स्टार्ट क्या है जी, कि हम कोई भी एक आइटम पहले चुन लेते हैं और उसके बाद साइंटिफिक हो जाते हैं, और पहले जो हमने आइटम चुननी है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, और उसके बाद फिर साइंटिफिक हो जाते हैं कि हर nth आइटम, nth मीन्स यानी कि यूं कह लीजिए कि एक पॉपुलेशन में से हमने पांचवी आइटम चुन ली और फिर कहा कि हर 100वीं आइटम, 100th आइटम को हम वेरीफाई करेंगे। अब पांचवीं आइटम अगर चुन ली सबसे पहले फर्स्ट टाइम, अब 100th आइटम जो होगी वो क्या होगी, 105, उसके बाद 205, उसके बाद 305। तो फर्स्ट टाइम आपने बिल्कुल एक रैंडमली, अब यहां पर रैंडमली जो है ये उसके लिटरल मीनिंग्स में आ गया। पहले जो हमने रैंडम अप्रोच पढ़ी थी वो क्या थी, कि हर आपकी जो पॉपुलेशन की आइटम है, सैंपलिंग यूनिट है, उसका चांस है सिलेक्ट होने का सैंपल के अंदर, वो सैंपल एक साइंटिफिक सैंपल है, वो बेस्ड ऑन सैंपल, वो रैंडम टेबल्स है। लेकिन अब जो इस वक्त रैंडम की बात हो रही है, ये है कि आपने जस्ट जजमेंटल बेस्ड एक आइटम को चुन लिया कि जी इसको बेस करके हम आगे चलेंगे, और उसके बाद आपने साइंटिफिकली आगे लेकर गए उसको सैंपल बनाने के लिए। अब वो साइंटिफिकली क्या है, जैसे हर 100th आइटम, हर 20th आइटम, हर 10th आइटम, इस तरह करके आपने एक फॉर्मूला बना लिया। तो शुरू में आपने अनबायस्ड होकर एक पॉइंट को चुनना है और वहां से फिर आपने स्टार्ट हो जाना। ये बड़ा कॉमनली यूज होता है मेथड सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए या ऑडिट सैंपल को बनाने के लिए। नेक्स्ट एक और मेथड आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब ये जो मेथड है मल्टी स्टेज सैंपलिंग का मेथड, ये यूज़ होता है जहाँ पर के हम डिफरेंट स्टेजेस को पहचान सकते हों, लाइक इन्वेंट्री डिफरेंट ब्रांचेस पे मौजूद है। अब एक तो इन्वेंट्री का बजात है खुद होना और दूसरा डिफरेंट ब्रांचेस का होना। अब ये दो स्टेजेस आ गए, एक तो हमने इन्वेंट्री को सिलेक्ट करना है सैंपल में, और दूसरा ब्रांचेस को हमने करना है कि किस ब्रांच की इन्वेंट्री को सिलेक्ट किया जाए सैंपल के अंदर। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग वाली बात आ गई। यहां पर हम दो डिफरेंट लेवल्स पर आएंगे। पहले हम ब्रांचेस को डिटरमिन कर लेंगे कि किन किन ब्रांचेस को हमने सैंपल में लेना है, और फिर इन्वेंट्री को डिटरमिन कर लेंगे कि वहां पर अब हमारा सैंपल बनाने का मेथड क्या होना चाहिए। सो ये जनाब मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक मेथड के तौर पर हमने समझ ली। नेक्स्ट कम्स ब्लॉक सैंपलिंग। अब ये ब्लॉक सैंपलिंग क्या है, ये भी कॉमनली यूज होता है, नॉर्मली इसको यूज किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं समझा जाता इसको। लाइक किसी एक मंथ को ब्लॉक बना लिया कि जी हम तो जून की इनवाइसेस को चेक करेंगे, हम तो सितंबर की इनवाइसेस को चेक करेंगे। कोई एक ब्लॉक बना लिया और उस ब्लॉक पर आपने सारी की सारी मेहनत की। ब्लॉक सैंपलिंग बहुत अच्छा नहीं समझा जाता इस सैंपलिंग को, लेकिन बहरहाल एक मेथड है कि आप इसमें ब्लॉक बनाकर चलते हैं। नेक्स्ट कम्स वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। ये मेथड खासा पॉपुलर मेथड बनता चला जा रहा है। इसमें हम जो वैल्यू है उसको एज ए यूनिट सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हम अब यूनिट जिसको बनाएंगे, जिसको सैंपलिंग यूनिट आप कह रहे हैं, वो बताते खुद वैल्यू होगी। लिहाजा इसी मेथड को हम मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग मेथड भी कहते हैं। ये वाला मेथड, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि खासी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, इसमें ऑडिटर एम्फेसाइज कर रहा होता है मनी वैल्यू पर, उस मॉनेटरी यूनिट पर, और फिर उस पे बेस करके वो सैंपल साइज डिटरमिन करता है। कुछ रीजंस हैं इसके पॉपुलर होने की, फॉर एग्जांपल कि इट्स एप्लीकेशन इज अप्रोप्रिएट विद लार्ज वेरिएंस पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बेशुमार वैरायटी मौजूद हो, वहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। लाइक डेटर्स, बेशुमार वैरायटी मौजूद होती है डेटर्स में, कम अमाउंट के डेटर्स भी होते हैं, ज्यादा बड़ी अमाउंट के डेटर्स भी होते हैं, और बाज़ सूरतों में तो नेगेटिव बैलेंस के डेटर्स भी होते हैं। अगर एडवांस में आपने कैश रिसीव कर लिया हुआ है, फिर इन्वेंट्रीज स्टॉक्स, इसमें बड़ी वैरायटी मौजूद होती है, बहुत सेंसिटिव किस्म की स्टॉक वैल्यू भी होती हैं, सेंसिटिव किस्म की स्टॉक आइटम्स भी होती हैं, और बिल्कुल ही सैंड पेपर की तरह के भी आपके पास स्टोर सप्लाईज मौजूद होती हैं, डिफरेंट वैरायटीज मौजूद होती हैं। लिहाजा ये मेथड डिफरेंट वैरायटीज को कवर कर लेता है। फिर द मेथड इज सुटेड टू पॉपुलेशंस वेयर एरर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। ये ऐसी पॉपुलेशंस पर है जहां पे एरर्स एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे होते, वहां पर इसको अप्लाई किया जाता है। फिर ये कि इट इम्प्लिसिटली टेक्स इनटू अकाउंट द ऑडिटर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। ऑडिटर के कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी को ये बेस कर रहा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी अभी बताता हूं। इसमें देखते हैं कि प्रोसीजर क्या इन्वॉल्व होता है। लाइक सबसे पहले तो ये कि डिटरमिन करें सैंपल साइज, दिस विल कवर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द मिनिमम अनएक्सेप्टेबल एरर रेट यानी कि मटीरियलिटी, और फिर डिजायर्ड रिस्क हम ये चीज एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, फिर ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी कि किस तरह से सैंपल साइज डिटरमिन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटर्स हैं जी 1250 नंबर ऑफ डेटर्स, उसकी एक लिस्ट हमारे पास है. ये देखिए इस वक्त आपको लिस्ट नजर आ रही है जिसमें के डेटर्स के नाम मौजूद हैं और उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस मौजूद हैं और क्यूमुलेटिव उन इंडिविजुअल बैलेंसेस का जो क्यूमुलेटिव बैलेंस बनता है वो आपको लास्ट कॉलम में नजर आ रहा है. लाइक जमील एक डेटर है हमारे पास, वी हैव टू रिसीव 600 रुपीज फ्रॉम हिम, क्यूमुलेटिव 600 हो गए. और इब्राहिम से 100 रुपीज लेने हैं, क्यूमुलेटिव टोटल हमारे पास हो गए जी 700 रिसीवेबल. रजी से हमने 1200 का बैलेंस रिसीवेबल करार दिया है, तो टोटल अब वो 700 तक तो पहुंच गए थे, प्लस 1200 1900 हमारे पास टोटल डेटर्स हो गए. और जब फैज हमारे डेटर बने तो 500 का ये डेटर है और हमारे पास टोटल अब डेटर्स की अमाउंट हो गई 2400. और सैफ 4000 से हमारा डेटर है तो टोटल हमारी अमाउंट हो गई 6400. यूं जब हमने टोटल देखा तो हमारे 1250 नंबर ऑफ डेटर्स का टोटल बनता है 300,000 रुपीस. अच्छा जी, अब ये मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग मेथड की खसूसियत ये है कि यहां पर नंबर ऑफ डेटर्स जो 1250 हैं वो पॉपुलेशन नहीं है. कि आप कहें कि जी वो 1250 नंबर ऑफ डेटर्स हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल बनाना, नहीं, वो आपका पॉपुलेशन नहीं है. आपके लिए पॉपुलेशन क्या है? आपके लिए पॉपुलेशन है वो 300,000 रुपए के डेटर्स. आपने देखना ये है कि वो जो 300,000 रुपए के डेटर्स हैं, 300,000 रुपीज के डेटर्स, वो आपकी पॉपुलेशन है. और उस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल बनाना, उनमें आपने डिटरमिन करना है कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा. अब यहां पर 300,000 रुपए में 1250 नंबर ऑफ डेटर्स मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फलाना नंबर ऑफ डेटर जो है उसको चूज कर लो, फलाने डेटर को चूज कर लो, फलाने डेटर को सिलेक्ट कर लो, या हर 10वें डेटर को ले लो. नहीं, यहां पर हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू डिटरमिन करते हैं और वो वैल्यू हम स्टेप वाइज आगे लेकर चलते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक रैंडमली वैल्यू को लेंगे और फिर आगे nth आइटम पर पहुंच जाएंगे. उसमें हम पहले तो एक डिटरमिन कर लेंगे जी कि हमें सैंपल साइज में कितनी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर 100 आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, हमारे सैंपल साइज में 100 आइटम्स होनी चाहिए. अब 300,000 रुपए का पॉपुलेशन साइज है, उसमें 100 आइटम्स होनी चाहिए. हम यहां पर सबसे पहली आइटम जो है वो जजमेंटल बेस्ड कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, अनबायसनेस पर बेस करती हुई. लाइक हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं जी 1000 रुपए का बैलेंस जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. अब 100 आपको यूनिट्स चाहिए, 300,000 रुपए सैंपल साइज है. अब वो 300,000 रुपए के सैंपल साइज को अगर 100 पर डिवाइड करें तो 3000 आपके पास वो इंटरवल की अमाउंट आती है कि हर 3000 के बाद आपको एक वैल्यू रिक्वायर्ड है. अब वो 3000 याद रखिएगा कि मॉनेटरी यूनिट की बात हो रही है. हमारे पास डेटर्स की लिस्ट मौजूद है मुख्तलिफ नामों के साथ, جس میں 1250 نمبر آف ڈیٹرز ہیں. ان 1250 نمبر آف ڈیٹرز سے مختلف اماؤنٹس لینی ہے, کسی سے 100, کسی سے 50, کسی سے 600, کسی سے کچھ, کسی سے کچھ. کوئی بڑی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں, کوئی چھوٹی اماؤنٹ کے ڈیٹرز ہیں جن سے بیلنسز ریسیویبل ہیں. ہم نے ان سب کا کمولیٹو بھی بنا لیا ایک. اب وہ کمولیٹو میں ہم نے سب سے پہلے 1000 پر اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈٹرمن کر لیا. اب وہ 1000 سے آنورڈز ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ ہر اس کمولیٹو بیلنس کو ہم چیک کریں گے جہاں پر اگلا 3000 پورا ہوتا ہوگا, کیونکہ 300,000 روپے ٹوٹل ہمارے پاس ویلیو ہے ڈیٹرز کی, اس کو جب 100 پر ڈیوائڈ کیا تو 3000 آ گیا. اب وہ منی ویلیو جہاں پر 3000 کمپلیٹ ہوگی ہو اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے. فار ایگزامپل اس کو دیکھتے ہیں, پھر مزید دوبارہ سے اس کی میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ہمارے پاس اس لسٹ آف ڈیٹرز میں پہلا 1000 جو سٹارٹنگ پوائنٹ بن رہا ہے وہ رضی پر بن رہا ہے, یعنی کہ کمولیٹو بیلنس میں 1900 روپیز کے اندر 1000 کا سٹارٹنگ پوائنٹ موجود ہے. اب رضی کو ہم ویریفائی کریں گے ڈیٹر ہونے کے ناطے, یعنی کہ اس کے اندر رضی کی جو 1200 روپیز کی ڈیٹرز کی بیلنس کی اماؤنٹ ہے اس کو ہم ویریفائی کر لیں گے, کیونکہ 1000 وہاں پر آیا. اب اس اماؤنٹ کو ہم نے ویریفائی کر لیا. اس کے بعد اب نیکسٹ جو آئے گا وہ 1000 میں ایڈ کر کے جہاں پر 4000 روپیز آ رہے ہوں گے بیلنس کے اندر, کمولیٹو بیلنس کے اندر, اس کو اب ہم پک کریں گے اپنے سیمپل کے اندر. لائک وہ 4000 اب ہمارے آ رہے ہیں سیف جو ڈیٹر ہے اس کے لیے. یہ 4000 بیلنس والا نا دیکھیں پلیز, یہ آپ دیکھیں 6400 کے اندر 4000 موجود ہے, یعنی کہ 1000 جو ہے اگر آپ کمولیٹو میں دیکھیں تو 1900 میں موجود ہے اور جو 4000 ہے وہ 6400 کے اندر موجود ہے. فرض کر لیں یہ سیف کا اگر بیلنس 3000 بھی ہوتا تو 5400 ہوتا نا ٹوٹل اس کا, تو بھی 4000 اس کے اندر موجود ہے, یعنی کہ 4000 کی فگر یہاں پر آ کے کمولیٹو کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, لہذا سیف کا بیلنس بھی جو ہے وہ ویریفائی ہونا بنتا ہے. تو اب ہم سسٹمیٹک ہو گئے. اب ہم نے ہر نیکسٹ اسٹیپ پہ جب جانا ہے تو وہ 3000 روپیز کی جمپ ہوگی. جہاں پر 3000 روپیز کی جمپ کمولیٹو بیلنس کے اندر نظر آئے گی وہی ہمارا سیمپل آئٹم کے طور پر سلیکٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ سسٹم میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ فرسٹ آف آل ہم نے کیا کیا, ہم نے فرسٹ آف آل کہا کہ جی ہمیں 100 آئٹمس چاہیے ہیں اپنے سیمپل میں. 300,000 روپے کو پاپولیشن ہم نے کہہ دیا. اب 300,000 روپے کو پاپولیشن جب کہا, 100 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس 3000 ایک فگر آ گئی جو جہاں پر موجود ہوگی ہم وہاں پر اس کو سیمپل آئٹم کے طور پر لے لیں گے. سٹارٹ ہم نے 1000 سے کیا. سٹارٹ آپ کو بارہ رینڈملی کرنا پڑے گا. 100 سے کر لیتے, اگر 100 سے سٹارٹ لیتے, 200 سے کر لیتے, 500 سے کر لیتے, کہیں سے آپ سٹارٹ لیتے. لائک فرض کر لیں اگر 500 سے ہم سٹارٹ لیتے تو سب سے پہلی سلیکشن کیا ہوتی, جمیل بذات خود, کیونکہ 500 وہیں پر موجود ہے. اب نیکسٹ کیا ہوتی, 3500, کیونکہ 3000 پہ ہم نے پلس کرنا ہے نا, تو 3500 ہمارا پھر اگین سیف کے اندر ہی آ رہا ہے کیونکہ 6400 کے اندر وہ 3500 موجود ہے, اور نیکسٹ جو بھی ہوتا وہ 3000 پلس کر کے ہوتا. تو یوں ہم ہر نیکسٹ اسٹیپ پر 3000 پلس کرتے چلے جائیں گے اور وہ جہاں پر ہمیں ملے گا اس بیلنس کو ہم پک کر لیں گے اپنے سیمپل کے اندر. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہم نے منی ویلیو جو ہے اس کو بیس کر کے سیمپل بنایا. اب اس سے ہوگا کیا, जो बड़ी वैल्यू के हमारे डेटर्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे, जो छोटी वैल्यू के वो स्किप हो जाएंगे, क्योंकि 3000 जहां पर जाके पूरा होगा किस बड़ी वैल्यू में पूरा होगा जाकर। ज्यादातर लिहाजा जो बड़ी वैल्यूज होंगी हो सकता है वो ओवरस्टेट हुई हो। तो हम ये अप्रोच कहां पर यूज कर रहे होंगे, जहां पर के ज्यादातर ओवरस्टेटमेंट्स मौजूद होंगे। ओवरस्टेटमेंट्स डेटर्स के बैलेंसेस में मौजूद होने का मतलब है कि वो बैलेंस बड़ा है। अगर वो बैलेंस छोटा है तो इसका मतलब अंडरस्टेटमेंट्स हुई हुई है, हमने डेटर्स को कम करके शो किया हुआ है। तो ये वाला मेथड, मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग मेथड, ये कहां पर अप्लाई होता है, जहां पर हमें अंदेशा होता है ओवरस्टेटमेंट्स का, और ज्यादातर एसेट्स को ओवरस्टेट किया होता है और आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको कैप्चर करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके एसेट्स ओवरस्टेट हों, क्योंकि प्रूडेंस की खिलाफ वर्जी हो जाती है। लिहाजा आप एज एन ऑडिटर जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको पकड़ना चाह रहे होते हैं, ओवरस्टेटमेंट मींस बड़ी वैल्यू ना, तो बड़ी वैल्यू को पकड़ने के लिए आप ये मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग का मेथड अप्लाई कर रहे हैं। और इसको अप्लाई करते हुए आप ओवरस्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जहां कहीं अब आपको लगेगा कि जी ओवरस्टेटमेंट अभी भी मौजूद है, तो वहां पर आप अपना सैंपलिंग साइज बढ़ा देंगे। लाइक अभी आपने अपना सैंपल साइज 100 आइटम्स का रखा, आप वहां पर बढ़ा सकते हैं, आप वहां पर 200 आइटम्स का सैंपल साइज रख सकते हैं। अब देखिए, अगर 200 आइटम्स का सैंपल साइज होगा तो टोटल आपके पास क्या आ रहा है जी पॉपुलेशन का, 300,000। 200 से जब डिवाइड करेंगे तो अब 3000 आंसर नहीं आएगा, जो पहले आपने 100 से डिवाइड किया था, 100 सैंपल यूनिट रखे थे ना आपने कि सैंपल आइटम्स 100 होंगी, तो 300,000 रुपए जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको 100 से डिवाइड किया था, 3000 हमारे पास एक जंप मिली थी। अब एक जंप जो होगी अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे तो वो 1500 रुपीज की एक जंप होगी, 300,000 डिवाइडेड बाय 200, 1500 रुपीज की एक जंप होगी। सो ये मेथड जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मेथड है मॉनेटरी यूनिट मेथड, और खासा मकबूल हो रहा है ये ऑडिटिंग के अंदर सैंपल बनाने के लिए। आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सैंपल बनाया जाता है। अभी आपकी स्टेज पर इस तरह से सैंपल बनाना, इसको सीखना टू मी काफी है। यहां पर मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि ऑडिटर एट द एंड इवेल्युएट करता है, देखो सैंपल पर बेस करके उसने एविडेंस तो हासिल कर लिए, अब उसने एक बात इवेल्युएट करनी है कि क्या वो अपने कंक्लूजन तक पहुंच चुका है। अब वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए बहरहाल दोबारा उस टॉलरेबल एरर तक पहुंचेगा और ये कहेगा कि एक सर्टेन अमाउंट तक मैं ऑलमोस्ट 95% कॉन्फिडेंट हूं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब अगर उसको लगता है कि ये सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की मिसस्टेटमेंट हो सकती है इस सैंपल साइज पर बेस करते हुए, तो फिर सैंपल साइज को चेंज करेगा। वो फिर ये नहीं रखेगा कि 100 आइटम्स ही हों, मैंने अभी आपको जैसे जिक्र किया, वो चेंज कर देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रख लीजिएगा कि वो टॉलरेबल एरर को एक सर्टेन अमाउंट पर लाकर डिटरमिन करेगा। अब वहां पर अगर वो ऑलमोस्ट से अबाउट 95% अपने आप को इस लेवल पर ले आता है कि जी ठीक है मैं तो अब राजी हो गया हूं, तो ओके फाइन, लेकिन अगर नहीं तो वो फिर सैंपल साइज को बढ़ाएगा, क्योंकि اس کے پاس ریزنیبل ایشورنس ہونا ضروری ہے ٹو ڈرا کنکلوژن اینڈ ٹو ایکسپریس اوپینین ایز ویل. سو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسپیشلی یہ جو میں نے آپ کو مانیٹری یونٹ سیمپلنگ میتھڈ بتایا, یہ اسپیشلی وہاں پر یوز ہو رہا ہے جہاں پر کہ آپ اوور اسٹیٹمنٹس کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جہاں پر کوئی انڈر اسٹیٹمنٹس کی بات ہے یہ یہاں پر نہیں آئے گا. اوور اسٹیٹمنٹس کیونکہ یہ بھی منی ویلیو پہ ہم فوکس کیے ہوئے ہیں, وہ مانیٹری یونٹ ویلیو میتھڈ ہے. اچھا جی, میں نے آپ کو سیمپلنگ سے متعلق جتنی باتیں بتائیں اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ سیمپلنگ ایک اپروچ ہے جس میں ہم اس بات پر متفق ہو رہے ہوتے ہیں کہ 100% پاپولیشن کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا بیکاز آف سرٹن ریزنز. Therefore, we must go for selection. اب وہ جو selection ہے that should be based on some technique, on some approach, so that that selection is representative and reasonable and justifiable and acceptable. اس سلیکشن کے دوران ہم ایک ٹالریبل ایرر ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اپنے آڈٹ رسک کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں. وہ ٹالریبل ایرر کیا ہے؟ وہی جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مٹیریلٹی لیول ہے, وہ آڈیٹنگ میں ٹالریبل ایرر کہلاتا ہے. اس پر بیس کر کے ہم سیمپل سائز ڈیٹرمن کر لیتے ہیں, اور ایک اور بات پر بیس کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آڈٹ رسک. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ تین طرح کے رسکس ہیں, انہیرنٹ رسک ہے, کنٹرول رسک ہے, ڈیٹیکشن رسک ہے. اب ان پر ہم بیس کر کے اپنا سیمپل سائز ڈیٹرمن کر لیتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ دو اپروچز ہیں سیمپلنگ کے, ایک ججمنٹل اپروچ ہے اور ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے. ججمنٹل اپروچ کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں آڈیٹر کا ایکسپیرینس زیادہ بیس کر رہا ہوتا ہے. جتنا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوگا وہ آڈیٹر, اتنا زیادہ وہ ٹھیک جج کرے گا سیمپل سائز کو, اور وہ سیمپل زیادہ ریپرزینٹیٹیو ہوگا. اور جتنا کم ایکسپیرینسڈ ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جائے گا. اور دوسرا ہم نے پڑھا کہ یہ اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ کی اپروچ بھی ہو سکتی ہے, اور جو کہ زیادہ سائنٹیفک ہے, زیادہ سینسیبل. یہ تھی جی ہماری کل کہانی سیمپلنگ کے ریفرنس میں, جس کے بارے میں ہم نے ان دو لیکچرز میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. اس کو بہت اچھی طرح تیار کر لیجئے گا, ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.